दानियल की पुस्तक संख्या 178 भविष्यवाणी संबंधी समानताएं। अंतिम दिनों में दानियल 11 का उद्घाटन।
दानियल अध्याय 11 के पद 16 से 19 तक उस इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में शीघ्र आने वाले रविवार के विधान से आरंभ होकर उस समय तक चलता है जब मीकाएल खड़ा होता है और मानव की अनुग्रह अवधि समाप्त हो जाती है। अतः ये उसी अध्याय के पद 41 से 45 तक के इतिहास का भी प्रतिनिधित्व करता है।
परंतु जो उसके विरुद्ध आएगा वो अपनी इच्छा के अनुसार करेगा और उसके सामने कोई ठहर न सकेगा, और वो रमणीय देश में खड़ा होगा और वो देश उसके हाथ से नष्ट हो जाएगा। वो अपने सारे राज्य की शक्ति के साथ और अपने साथ धर्मी लोग लेकर प्रवेश करने का भी निश्चय करेगा। वो ऐसा ही करेगा और वो उसे स्त्रियों की पुत्री देगा उसे भ्रष्ट करने के लिए, परंतु वो न तो उसके पक्ष में ठहरेगी और न उसकी होगी। इसके बाद वो अपना मुख द्वीपों की ओर फेर देगा और बहुतों पर अधिकार कर लेगा, परंतु अपनी ओर से एक प्रधान उसके द्वारा किए गए अपमान को समाप्त कर देगा। अपने ऊपर कोई अपमान लिए बिना वो उसे उसी पर लौटा देगा। तब वो अपने ही देश के गढ़ की ओर अपना मुख करेगा, परंतु वो ठोकर खाएगा और गिरेगा और पाया न जाएगा। दानियल 11:16-19।
जब बेन वाइट ने दानियल के 11वें अंतिम पूर्ति पर बात की तो उन्होंने कहा कि इस भविष्यवाणी में जो इतिहास पूरा हो चुका है उसका बहुत सा भाग फिर से दोहराया जाएगा। 41 से 45 तक के पद इस भविष्यवाणी के इतिहास को दोहराते हैं। ये पद तब पूरे हुए जब मूर्ति पूजक रोम ने पहले 3 भौगोलिक क्षेत्रों पर विजय पाकर संसार पर नियंत्रण कर लिया।
यद्यपि मिस्र उत्तर के राजा अंतियोकुस के सामने ठहर न सका, तथापि अंतियोकुस भी रोमियों के सामने जो अब उसके विरुद्ध आए ठहर न सका। अब कोई भी राज्य इस उदित होती हुई शक्ति का अधिक समय तक प्रतिरोध करने में समर्थ न रहा। ईसा पूर्व 65 में जब पोम्पेई ने अंतियोकुस एशियाटिकुस को उसकी संपत्तियों से वंचित कर दिया और सीरिया को घटाकर एक रोमी प्रांत बना दिया, तब सीरिया जीत लिया गया और रोमी साम्राज्य में मिला लिया गया। उसी शक्ति को पवित्र देश में भी खड़ा होना था और उसे भस्म करना था। रोम ईसा पूर्व 16 में परमेश्वर की प्रजा यहूदियों के साथ संधि द्वारा संबद्ध हुआ, जिस तिथि से वो भविष्यद्वाणी के अनिकालक्रम में एक प्रमुख स्थान रखता है। तथापि उसने यहूदिया पर वास्तविक विजय के द्वारा अधिकार क्षेत्र ईसा पूर्व 23 तक प्राप्त नहीं किया, और तब निम्नलिखित रीति से पॉन्टस के राजा मित्रडेट्स के विरुद्ध अपने अभियान से लौटने पर पोम्पी के सामने यहूदिया के सिंहासन के लिए 2 दावेदार हिरकेनस और एरिस्टोब्यूलस संघर्ष कर रहे थे। उनका मामला पोम्पी के समक्ष आया, जिसने शीघ्र ही एरिस्टोब्यूलस के दावों की अन्यायपूर्णता समझ ली, पर उसने अपने लंबे समय से वांछित अरब के अभियान के बाद ही इस विषय में निर्णय स्थगित करना चाहा, ये वादा करते हुए कि वो तब लौटकर उनके मामले को जैसा न्याय संगत और उचित प्रतीत होगा वैसा निपटाएगा। पोम्पी की वास्तविक भावना भांपकर एरिस्टोब्यूलस शीघ्र ही यहूदिया लौट गया, अपने लोगों को हथियारबंद किया और दृढ़ रक्षा की तैयारी की, ये निश्चय करके कि किसी भी कीमत पर वो ताज बनाए रखेगा जिसके किसी और के पक्ष में निर्णय हो जाने की उसे आशंका थी। पोम्पी ने उस भगोड़े का निकट से पीछा किया। जब वो यरूशलेम के पास पहुंचा तो एरिस्टोब्यूलस अपनी चाल पर पछताने लगा, उससे मिलने बाहर आया और पूर्ण अधीनता तथा बड़ी धनराशि का वचन देकर मामला सुलझाने का प्रयास किया। पोम्पी ने ये प्रस्ताव स्वीकार करते हुए धन प्राप्त करने के लिए सैनिकों की एक टुकड़ी के नेतृत्व में गैबिनियस को भेजा, परंतु जब वो उपसेनानायक यरूशलेम पहुंचा तो उसने पाया कि फाटक उसके लिए बंद थे और दीवारों के ऊपर से उसे ये बता दिया गया कि नगर उस समझौते पर कायम नहीं रहेगा। इस प्रकार की छल कपट को दंडमुक्त नहीं रहने देने हेतु पोम्पेई ने एरिस्टोबुलस, जिसे वो अपने साथ रोके हुए था, को बेड़ियों में जकड़ दिया और तुरंत अपनी पूरी सेना के साथ यरूशलेम पर कूच कर दिया। एरिस्टोबुलस के समर्थक उस स्थान की रक्षा के पक्ष में थे, हाइरकानुस के समर्थक फाटकों को खोल देने के। दूसरे पक्ष की संख्या अधिक होने और वही हावी रहने से पोम्पेई को नगर में निर्बाध प्रवेश दे दिया गया। तब एरिस्टोबुलस के अनुयायी मंदिर पर्वत पर जा डटे। उस स्थान की रक्षा का उनका संकल्प उतना ही दृढ़ था जितना उसे अधीन करने का पोम्पेय का। 3 महीनों के अंत में दीवार में इतनी बड़ी सेंध कर दी गई कि धावा बोला जा सके और उस स्थान पर तलवार के बल पर कब्जा कर लिया गया। इसके बाद हुए भयानक संहार में 12,000 व्यक्ति मारे गए। इतिहासकार लिखता है कि ये अत्यंत मर्मस्पर्शी दृश्य था। उस समय ईश सेवा में लीन पुरोहित शांत हाथों और अडिग संकल्प के साथ अपना अभ्यस्त कार्य करते रहे, मानो चारों ओर की उन्मत्त हलचल से अनजान हो, जबकि उनके चारों तरफ उनके अपने लोग मारे जा रहे थे और अक्सर उनके अपने रक्त का भी मिश्रण उनके बलिदानों के रक्त से हो जाता था। युद्ध का अंत कर देने के बाद पोम्पेय ने यरूशलम की दीवारों को ध्वस्त कर दिया। कई नगरों को यहूदिया के अधिकार क्षेत्र से हटाकर सीरिया के अधिकार क्षेत्र में दे दिया और यहूदियों पर खिराज लगाया। इस प्रकार पहली बार विजय के माध्यम से यरूशलेम उस शक्ति के हाथों में सौंपा गया जो गौरव भूमि को अपने लोहे के शिकंजे में तब तक जकड़े रखने वाली थी जब तक वो उसे पूरी तरह नष्ट न कर दे। पद 70। वह अपने सारे राज्य की शक्ति के साथ प्रवेश करने का भी निश्चय करेगा और उसके साथ सीधे सच्चे लोग होंगे। वो ऐसा ही करेगा और वह उसे स्त्रियों की पुत्री देगा, उस बेटी को भ्रष्ट करने के उद्देश्य से, परंतु वह न तो उसके पक्ष में ठहरेगी और न उसकी होगी। बिशप न्यूटन इस पद के लिए एक वैकल्पिक पाठ प्रस्तुत करते हैं जो अर्थ को अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करता प्रतीत होता है। इस प्रकार वह बलपूर्वक पूरे राज्य में प्रवेश करने के लिए अपना मुख भी दृढ़ करेगा। पद 16 हमें रोमनों द्वारा सीरिया और यहूदिया की विजय तक ले आया। रोम ने इससे पहले मैसेडोन और थ्रीस पर विजय प्राप्त कर ली थी। अलेक्जेंडर के संपूर्ण राज्य में से अब केवल मिस्र ही ऐसा भाग बचा था जो रोमी शक्ति के अधीन नहीं आया था, और वही शक्ति अब बलपूर्वक उस देश में प्रवेश करने के लिए अपना मुख दृढ़ कर रही थी। टॉलेमी ऑलेटेस की मृत्यु ईसा पूर्व 51 में हुई। उसने मिस्र का मुकुट और राज्य अपने ज्येष्ठ पुत्र और पुत्री टॉलेमी और क्लियोपेट्रा को छोड़ दिया। उसकी वसीयत में ये एक प्रावधान किया गया था कि वे आपस में विवाह करें और संयुक्त रूप से राज्य करें, और क्योंकि वे युवा थे उन्हें रोमियों के संरक्षणाधीन रखा गया। रोमी लोगों ने इस उत्तरदायित्व को स्वीकार किया और मिस्र के युवा उत्तराधिकारियों का संरक्षक पोम्पी को नियुक्त किया। कुछ ही समय बाद पोम्पेय और सीजर के बीच विवाद भड़का उठा और दोनों सेनापतियों के बीच प्रसिद्ध फारसालिया का युद्ध लड़ा गया। पोम्पेय पराजित होकर मिस्र भाग गया। सीजर तुरंत उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचा, परंतु उसके पहुंचने से पहले ही टॉलेमी ने, जिसका अभिभावक पोम्पेय नियुक्त किया गया था, उसकी कायरतापूर्ण ढंग से हत्या करवा दी। अतः सीजर ने वो नियुक्ति अपने हाथ में ले ली जो पोम्पेय को दी गई थी, टॉलेमी और क्लियोपेट्रा का अभिभावक होने की। उसने पाया कि मिस्र आंतरिक अशांति से उथल पुथल में था। टॉलेमी और क्लियोपेट्रा एक दूसरे के विरुद्ध हो चुके थे और क्लियोपेट्रा को शासन में उसके हिस्से से वंचित कर दिया गया था। इसके बावजूद उसने अपनी छोटी सी सेना 800 घुड़सवार और 3,200 पैदल सैनिक के साथ अलेक्जेंड्रिया में उतरने, विवाद का संज्ञान लेने और उसके समाधान का बीड़ा उठाने में देर नहीं की। प्रतिदिन परेशानियां बढ़ने पर सीजर को अपनी छोटी सेना अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए अपर्याप्त लगी और उस ऋतु में चलने वाली उत्तरी हवा के कारण मिस्र छोड़ पाने में असमर्थ होकर उसने एशिया में दूत भेजे और उस क्षेत्र में उसके पास जो भी सैनिक थे उन्हें यथाशीघ्र उसकी सहायता के लिए आने का आदेश दिया। सबसे घमंडी ढंग से उसने ये फरमान जारी किया कि टॉलेमी और क्लियोपेट्रा अपनी सेनाएं भंग करें, अपने मतभेदों के निपटारे के लिए उसके सामने उपस्थित हों और उसके निर्णय का पालन करें। मिस्र एक स्वतंत्र राज्य होने के कारण इस घमंडी फरमान को उसकी शाही गरिमा का अपमान माना गया, जिस पर मिस्रवासी अत्यंत क्रोधित होकर हथियार उठा लिए। सीजर ने उत्तर दिया कि वो उनके पिता ओलेट्स की वसीयत के बल पर कार्य कर रहा था, जिन्होंने अपने बच्चों को रोम की सीनेट और जनता की अभिरक्षा में सौंप दिया था, जिसकी समस्त सत्ता अब कौंसल के रूप में उसके हाथों में निहित थी, और ये कि अभिभावक के रूप में उसे उनके बीच मध्यस्थता करने का अधिकार था। आखिरकार मामला उसके सामने लाया गया और संबंधित पक्षों की ओर से पैरवी करने के लिए अधिवक्ता नियुक्त किए गए। महान रोमी विजेता की कमजोरी से परिचित क्लियोपेट्रा ने समझा कि उसके साक्षात उपस्थित होने का सौंदर्य उसके पक्ष में निर्णय दिलाने में किसी भी वकील से अधिक प्रभावी होगा जिसे वो नियुक्त कर सकती थी। बिना पकड़े उसके समक्ष पहुंचने के लिए उसने ये युक्ति अपनाई। वो कपड़ों की एक गठरी में अपने को पूरे बदन समेत सीधा लेट गई। उसके सिसिली सेवक अपोलोडोरस ने उस गठरी को एक कपड़े में लपेटा, पट्टे से कसकर बांधा और उसे अपने बलशाली कंधों पर उठाकर सीजर के कक्षों की ओर चल पड़ा। रोमी सेनापति के लिए उपहार होने का दावा करते हुए उसे दुर्ग के फाटक से भीतर प्रवेश मिल गया। वो सीजर के सामने पहुंचा और बोझ को उसके पैरों के पास रख दिया। जब सीजर ने इस सजीव गठरी को खोला तो देखा कि सुंदर क्लियोपेट्रा उसके सामने खड़ी है। वो इस युक्ति से तनिक भी अप्रसन्न नहीं हुआ और दो पतरस दो सिलक तोजार का फाके वर्णिक स्वभाव का होने के कारण इतनी सुंदर स्त्री का प्रथम दर्शन रोलन के अनुसार इतनी सुंदर स्त्री का प्रथम प्रभाव डाल गया जिसकी उसने इच्छा की थी। अंततः सीजर ने फरमान दिया कि वसीयत के आशय के अनुसार भाई और बहन संयुक्त रूप से सानहासन पर विराजमान हों। राज्य के प्रधानमंत्री पोथिनस, जिसने क्लियोपेट्रा को संहासन पर हटाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी, उसकी पुनर्स्थापना के परिणामों से भयभीत था। इसलिए उसने जनता में ये संकेत फैलाकर सीजर के विरुद्ध ईर्ष्या और वैद्य मंशा भड़काना शुरू किया कि वो अंततः क्लियोपेट्रा को अकेले सत्ता सौंपने का इरादा रखता है। शीघ्र ही खुला विद्रोह भड़क उठा। अकेलास 20,000 सैनिकों की अगुवाई करते हुए सीजर को अलेक्जेंड्रिया से खदेड़ने आगे बढ़ा। शहर की सड़कों और गलियों में अपने छोटे से दल को कुशलता से तैनात करके सीजर को आक्रमण विफल करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। मिस्रवासियों ने उसके बेड़े को नष्ट करने का प्रयास किया। उसने प्रतिकार में उनका बेड़ा जला दिया। जलते हुए कुछ जहाज जब लहरों से धकेले होकर घाट के पास आ लगे तो शहर की कई इमारतों में आग लग गई और लगभग 4,00,000 ग्रंथों वाली प्रसिद्ध अलेक्जेंड्रियाई पुस्तकालय नष्ट हो गई। युद्ध की स्थिति अधिक भयावह होते देख सीजर ने सभी पड़ोसी देशों में सहायता के लिए संदेश भेजे। एशिया माइनर से उसकी सहायता को एक बड़ा बेड़ा आया। मिथ्रिडेट्स सीरिया और सिलिसिया में जुटाई गई एक सेना के साथ मिस्र के लिए प्रस्थान किया। इदुमी एंटीपैटर 3,000 यहूदियों के साथ उससे आ मिला। मिस्र में जाने वाले दर्रों पर अधिकार रखने वाले यहूदियों ने सेना को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ने दिया। उनके इस सहयोग के बिना पूरी योजना निश्चय ही विफल हो जाती। इस सेना के आगमन ने संघर्ष का फैसला कर दिया। नील नदी के निकट एक निर्णायक युद्ध हुआ जिसमें सीजर को पूर्ण विजय मिली। भागने की कोशिश करते हुए टोलेमी नदी में डूब गया। अलेक्जेंड्रिया और समूचा मिस्र तब विजेता के आगे आत्मसमर्पण कर गए। अब रोम अलेक्जेंडर के मूल साम्राज्य के समूचे क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और उसे अपने में समाहित कर चुका था। पाठ के सीधे जनों से निस्संदेह यहूदियों का अभिप्राय है, जिन्होंने उसे वो सहायता दी जिसका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। इसके बिना वो अवश्य ही असफल हो जाता, परंतु इसके साथ उसने ईसा पूर्व 47 में मिस्र को पूर्णतः अपनी शक्ति के अधीन कर लिया। स्त्रियों की पुत्री को भ्रष्ट करना, क्लियोपेट्रा के आग प्रति सीजर में जगी वासना, जिससे उसे एक पुत्र भी हुआ, को ही इतिहासकार ने मिस्री युद्ध जैसे इतने खतरनाक अभियान को हाथ में लेने का एकमात्र कारण बताया है। इस कारण वो अपने कामकाज की अपेक्षा से कहीं अधिक समय तक मिस्र में रुका। वो उस उच्छृंखल रानी के साथ दावतें उड़ाते और रंग रलियां मनाते हुए पूरी पूरी रातें बिताता था। परंतु भविष्यवक्ता ने कहा, वह न तो उसके पक्ष में ठहरेगी न ही उसकी होगी। बाद में क्लियोपेट्रा ऑगस्टस सीजर के शत्रु एंटनी के साथ जा मिली और उसने रोम के विरुद्ध अपनी पूरी शक्ति लगा दी। पद 18। इसके बाद वो अपना मुख द्वीपों की ओर करेगा और बहुतों पर अधिकार कर लेगा, परंतु अपने ही हित के लिए एक राजकुमार उसके द्वारा किए गए अपमान को समाप्त कर देगा। बिना अपने ऊपर अपमान लिए वो उसे उसी पर लौटा देगा। सिमेरियन बॉस्फोरस के राजा फारनाकिस के साथ युद्ध ने अंततः उसे मिस्र से दूर खींच लिया। जहां शत्रु था वहां उसके पहुंचते ही फ्रेडो कहते हैं, वह न स्वयं को और न उन्हें किसी प्रकार का अवकाश दिए, तुरंत उन पर टूट पड़ा और उन पर निर्णायक विजय प्राप्त की। जिसका वृत्तांत उसने अपने एक मित्र को इन तीन शब्दों में लिखा, वेनी विदी वीची, मैं आया, मैंने देखा, मैंने विजय प्राप्त की। इस पद का अंतिम भाग कुछ अस्पष्टता में घिरा हुआ है और इसके अनुप्रयोग के विषय में मतभेद है। कुछ लोग इसे सीजर के जीवन में और पीछे लागू करते हैं और समझते हैं कि इसकी पूर्ति उन्हें पोम्पेये के साथ उसके विवाद में मिलती है, परंतु भविष्यवाणी में स्पष्ट रूप से परिभाषित पूर्ववर्ती और अनुवर्ती घटनाएं हमें बाध्य करती हैं कि हम इस भविष्यवाणी के इस भाग की पूर्ति फार्नाकिस पर विजय और रोम में सीजर की मृत्यु के बीच खोजें, जैसा कि अगले पद में दिखाया गया है। इस अवधि का अधिक विस्तृत इतिहास ऐसी घटनाओं को प्रकाश में ला सकता है जो इस अंश के अनुप्रयोग को निर्बाध बना दें। पद अन्वय। तब वो अपने ही देश के किले की ओर अपना मुख मोड़ेगा, परंतु वो ठोकर खाकर गिर पड़ेगा और पाया नहीं जाएगा। इस विजय के पश्चात कैसर ने पोम्पेये के दल के अंतिम शेष अंशों को अफ्रीका में कैटो और स्किपियो को तथा स्पेन में लेबियंस और वारस को पराजित किया। रोम अपने ही देश के गढ़ में लौटने पर उसे आजीवन तानाशाह बनाया गया और उसे ऐसी अन्य शक्तियां और सम्मान प्रदान किए गए जिनसे वो वास्तव में समस्त साम्राज्य का निरंकुश अधिपति बन गया। परंतु भविष्यद्वक्ता ने कहा था कि वो ठोकर खाएगा और गिर पड़ेगा। इस भाषा से तात्पर्य है कि उसका पतन आकस्मिक और अप्रत्याशित होगा, जैसे कोई व्यक्ति चलते समय अनायास ठोकर खाकर गिर पड़े। और इस प्रकार ये मनुष्य, जिसने 500 युद्ध लड़े और जीते, 1000 नगरों पर अधिकार किया और 11,92,000 मनुष्यों का वध किया, रणकोलाहल और संघर्ष की घड़ी में नहीं वरन तब गिर पड़ा जब वो समझता था कि उसका मार्ग समतल है और फूलों से बिछा हुआ है, और जब ये माना जाता था कि संकट बहुत दूर है, क्योंकि वो उस सभा के हाथों से राजपदवी ग्रहण करने के लिए अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर सीनेट भवन में अपना स्थान ग्रहण कर ही रहा था कि विश्वासघात का खंजर अचानक उसके हृदय में उतर गया। कैसियस ब्रूटस और अन्य षड्यंत्रकारी उस पर टूट पड़े और वो 23 घावों से बेधा हुआ गिर पड़ा। इस प्रकार वो अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ा और फिर पाया न गया। ईसा पूर्व 24। यूरिया स्मिथ, डैनियल एंड द रेवलेशन 258-264।
मूर्ति पूजक रोम उत्तर के राजा की सिंहासन पर स्थापना की ऐतिहासिक पूर्ति एक ऐसी इतिहास की रेखा है जो निकट भविष्य में आने वाले रविवार विधि के समय घटित होने वाले त्रिगुणात्मक संगसी में आधुनिक रोम के सिंहासनारोहण के इतिहास का पूर्वाभास कराती है। ये इतिहास 30 से 36 पदों में भी प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया है, जहां ये पहचाना गया है कि 538 में पोपतंत्र को पहली बार कब सिंहासन पर स्थापित किया गया। 16 से 19 पद तथा 31 से 36 पद दोनों ही सूर की वेश्य के अंतिम उत्थान और पतन का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही इतिहास 5 से 9 पदों में भी निरूपित किया गया था, जब उत्तर का पहला राजा 3 भौगोलिक क्षेत्रों को जीतने के पश्चात स्थापित हुआ। इसके बाद उसने दक्षिण के राजा के साथ एक संधि की, परंतु उस संधि को तोड़ दिया और उसके प्रत्युत्तर में दक्षिण के राजा ने घातक घाव पहुंचाया और उत्तर का राजा मिस्र की बंधुआई में मर गया। पद 5 से 9, 16 से 9 और 30 से 36 तीन भविष्यवाणी की रेखाएं प्रस्तुत करते हैं जो पद 40 से 45 में पूर्ण होती हैं, जब सिस्टर व्हाइट ने यह बताया कि इस भविष्यवाणी में जो बहुत सा इतिहास पूरा हो चुका है वो दोहराया जाएगा, तो उसका वास्तविक अर्थ ये था कि पूरा अध्याय पद 40 से 45 को ही चित्रित करता है। पद 20 से 22 मसीह के जन्म और मृत्यु को निर्दिष्ट करते हैं। इस प्रकार उसके जन्म द्वारा 7798 और 1989 दोनों में अंत के समय का प्रतिनिधित्व होता है, और फिर क्रूस पर उसकी मृत्यु 22 अक्टूबर 1844 और रविवार के कानून का प्रतिनिधित्व करती है। पद 23 मकाबी विद्रोह के इतिहास के दौरान यहूदियों और रोम के बीच हुई संधि को दर्शाता है। उस इतिहास में संधि 141 ईसा पूर्व और 159 ईसा पूर्व की तिथियों द्वारा दर्शाई जाती है। मकाबी इतिहास एक आंतरिक रेखा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी शुरुआत रोम और मकाबी यहूदियों के बीच एक संधि से होती है, जिसे यहूदियों ने आरंभ किया था और अंततः यहूदियों की इस घोषणा पर समाप्त हुआ कि उनका राजा कैसर के सिवा कोई नहीं। निस्संदेह पद 23, पद 21 और 22 के बाद आता है और पद 21 मसीह के जन्म को दर्शाता है जो भविष्यवाणी के अनुसार अंत का समय है, तथा पद 22 क्रूस को दर्शाता है जो रविवार के कानून का प्रतिनिधित्व करता है। क्रूस पर यहूदियों ने कैसर रोम को अपना राजा ठहराया और 23वें पद की संधि यहूदियों द्वारा रोम की सेवा करने के चुनाव की शुरुआत का संदर्भ देती है, ठीक उस समापन बिंदु पर जब यहूदियों ने रोम के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा की थी। क्रूस पर प्रतीकित यहूदियों के अंत के बाद यहूदियों की रोम से संबद्धता की शुरुआत होती है। 24 से 30 तक के पद उन 360 वर्षों का वर्णन करते हैं जब मूर्ति पूजक रोम ने ईसा पूर्व 31 में एक्टियम के युद्ध से लेकर वर्ष 330 में रोम से कॉन्स्टेंटिनोपल में राजधानी के स्थानांतरण तक पूर्ण प्रभुत्व के साथ शासन किया। 360 वर्षों की यह अवधि उन 1260 वर्षों का प्रतीक है जब पापाई रोम ने पूर्ण प्रभुत्व के साथ शासन किया, और ये दोनों मिलकर पद 41 से आरंभ होने वाली उस अवधि का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसमें शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के समय होने वाला त्रिविध गठबंधन शामिल है, तथा जो अनुग्रह काल के समापन तक चलता है। अध्याय 11 की इतिहास संबंधी सभी भविष्यवाणी रेखाएं दानियेल 11 की अंतिम 6 आयतों से मेल खाती हैं, परंतु 1990 में अंत के समय से आरंभ होकर आयत 40 में दर्शाए गए से लेकर आयत 41 में रविवार के कानून तक की जो भविष्य सूचक इतिहास है, वही दानियेल की उन भविष्यवाणियों का वो भाग है जो अंतिम दिनों से संबंधित है। आयत 40 में जो इतिहास रिक्त छोड़ा गया है वो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है जो समय निकट होने पर अनुग्रह का समय समाप्त होने से ठीक पहले खोल दिया जाता है। हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
हमारे पास परमेश्वर की आज्ञाएं और यीशु मसीह की गवाही है जो भविष्यवाणी की आत्मा है। परमेश्वर के वचन में अनमोल रत्न पाए जाते हैं। जो लोग इस वचन की खोज करते हैं उन्हें मन को निर्मल रखना चाहिए। उन्हें खाने पीने में विकृत भूख के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए। यदि वे ऐसा करते हैं तो उनका मस्तिष्क भ्रमित हो जाएगा। इस पृथ्वी के इतिहास के समापन दृश्यों से संबंधित उन बातों का अर्थ पता लगाने के लिए गहराई में उतरने के तनाव को वे सहन नहीं कर पाएंगे। जब दानियेल बौर प्रकाशित वाक्य की पुस्तकें बेहतर समझी जाएंगी तो विश्वासियों को एक सर्वथा भिन्न धार्मिक अनुभव होगा। उन्हें स्वर्ग के खुले द्वारों की ऐसी झलकें दी जाएंगी कि हृदय और मन पर उस चरित्र की छाप पड़ जाएगी जिसे सभी को विकसित करना है, ताकि वे उस धन्यता का अनुभव कर सके जो शुद्ध हृदय वालों को पुरस्कार के रूप में मिलने वाली है। प्रभु उन सबको आशीष देगा जो नम्रता और दीनता से प्रकाशित वाक्य में जो प्रकट किया गया है उसे समझने का प्रयास करेंगे। इस पुस्तक में इतना कुछ है जो अमरत्व से ओतप्रोत है और महिमा से परिपूर्ण है कि जो भी इसे मन लगाकर पढ़ते और खोजते हैं उन्हें ये आशीष मिलती है। जो इस भविष्यवाणी के वचनों को सुनते हैं और जो उसमें लिखी बातों का पालन करते हैं। प्रकाशित वाक्य के अध्ययन से एक बात निश्चित रूप से समझ में आएगी कि परमेश्वर और अपने लोगों के बीच का संबंध घनिष्ठ और दृढ़ है। स्वर्गीय ब्रह्मांड और इस संसार के बीच एक अद्भुत संबंध दिखाई देता है। दानियेल को जो बातें प्रकट की गई उनका परिपूर्ण बाद में पात्मोस द्वीप पर यूहन्ना को दी गई प्रकाशना द्वारा हुआ। इन दोनों पुस्तकों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए। दानियेल ने दो बार पूछा, समय के अंत तक और कितना समय रहेगा? और मैंने सुना परंतु समझा नहीं। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत क्या होगा? और उसने कहा, हे दानियेल, तू अपने मार्ग चला जा, क्योंकि ये वचन अंत समय तक बंद रखे और मुहर बंद किए गए हैं। बहुत से शुद्ध किए जाएंगे, उजले बनाए जाएंगे और परखे जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करेंगे, और दुष्टों में से कोई न समझेगा परंतु बुद्धिमान समझेंगे। और जिस समय से नित्य बलिदान हटाया जाएगा और उजाड़ने वाली घृणित वस्तु स्थापित की जाएगी, वहीं से 1290 दिन होंगे। धन्य है वो जो प्रतीक्षा करता है और 1335 दिनों तक पहुंचता है, परंतु तू अंत तक अपनी मार्ग चला जा, क्योंकि तू विश्राम करेगा और दिनों के अंत में अपनी बारी में खड़ा होगा। यहूदा के गोत्र का सी ही वो था जिसने पुस्तक की मुहर खोली और यूहन्ना को ये प्रकट किया कि इन अंतिम दिनों में क्या होना है। दानियेल अपनी गवाही देने के लिए अपने भाग में खड़ा रहा, जो अंत के समय तक मोहरबंद थी, जब हमारे संसार में पहले स्वर्गदूत का संदेश घोषित किया जाना था। ये बातें इन अंतिम दिनों में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, परंतु जबकि बहुतों को शुद्ध किया जाएगा, शुभ्र बनाया जाएगा और परखा जाएगा, दुष्ट दुष्टता करेंगे और दुष्टों में से कोई न समझेगा। ये कितना सत्य है। पाप परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन है, और जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था के विषय में दी गई ज्योति को स्वीकार नहीं करेंगे, वे पहले, दूसरे और तीसरे स्वर्गदूतों के संदेशों की घोषणा को नहीं समझेंगे। दानियल की पुस्तक की मुहर यूहन्ना को दिए गए प्रकाशित वाक्य में खोली गई है, और वो हमें इस पृथ्वी के इतिहास के अंतिम दृश्यों तक आगे ले जाती है। क्या हमारे भाई ये ध्यान में रखेंगे कि हम अंतिम दिनों के खतरों के बीच जी रहे हैं? प्रकाशित वाक्य को दानियल के साथ मिलाकर पढ़ें, इन बातों को सिखाएं। टू मिनिस्टर्स, 1 लकपान, अफ्रेंके।